ان نان مسلمس کے ساتھ، ان کو چاہیے کہ وہ سورۃ الکافرون کی روشنی میں اورینٹلسٹ سے بات کرنے کے لیے اپنا اسلام کا پوائنٹ آف ویو سامنے ضرور رکھیں۔ غزوہ حنین میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زخمی ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا، انا رسول اللہ لا کذب، میں اللہ کا رسول ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ وہ موقع غزوہ حنین کا جب صحابہ کو لگا تھا کہ ڈیو ٹو آر نمبر ہم تو جیتے جتائے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب انسان اپنے نمبرز پر توکل کرنے لگ جاتا ہے تو پھر انسان کا عبد بننے والا معاملہ جو ہے وہ ذرا کمزور ہونے لگتا ہے۔ اینڈ دا مومنٹ وی ول لوز دا گرپ آف آر عبودیہ، زندگی کے اندر ٹھوکریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھوکریں تو زندگی میں، مشکل تو کسی کے بھی آ سکتی ہے، بٹ ایک ٹھوکر لگتی ہے عابد کو، یا ایک ٹھوکر لگتی ہے عبد کو، اور ایک ٹھوکر لگتی ہے اللہ کے نافرمان کو۔ نافرمان کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہ منہ کے بل گرتا ہے، لا مولا لہم، یاد کر لیجئے۔ اور اللہ کے فرما بردار کو ٹھوکر لگتی ہے، فزیکلی ہو سکتا ہے بلیڈنگ اس کو بھی ہو رہی ہو، لیکن اس کا تو مولا اللہ ہے، اللہ ہو مولا، اللہ اس کا ہے اصل ولی، اس کو پروٹیکٹ کرنے والا، تو اس ٹھوکر کے بعد وہ اس کو سنبھالنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہے جو کہ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور عابدون جو یہاں پر جمع میں آیا ہے اس میں انکمپس ہو گیا کہ ولا انتم عابدون کفار کے لیے آیا ہے، نہ یہ اس وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اسم فارم ہے، اب یہ آئندہ بھی ہدایت کے راستے پر کبھی نہیں آئیں گے، دے ول ریمین ان دیئر کفر۔ اور قرآن کی ایک اور آیت بہت خوبصورتی سے اس پورشن کا جو ہے وہ تفسیر کرتی ہے، بہت ہی خوبصورتی سے، وہ سورہ زخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 79، سورۃ الزخرف آیت نمبر 79، وہاں پر آتا ہے۔ اور یہ کفار ہی کا ڈپکشن ہے ایک، کہ کفار کیا کرتے ہیں زندگی کے اندر، ام ابرمو امرن فانا مبرمون، کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی پکا ارادہ کر لیا ہے؟ ابرام کہتے ہیں کوئی پکا ارادہ کرنے کا، ام ابرمو امرن، کیا انہوں نے اپنے کوئی تھاٹ پیٹرن، کوئی اپنی فلسفی، کوئی اپنا لائف سٹائل، کوئی اپنے لیے اپنے چوائس کو بڑا پکا کر لیا ہے، کوئی پکا کام کر لیا؟ فانا مبرمون، ہم بھی پکا کام کرنے والے ہیں۔ ابھی یہ تو آپ نے صرف ترجمہ سنا، بٹ جسٹ ڈگ اے لٹل لٹل بٹ، ظاہری بات ہے میں تو یہ آیت نہیں پڑھا رہی، لیکن کیونکہ اس آیت کو سورۃ الکافرون کی آیت نمبر 5 کو ڈسکرائب کرنے کو کلاسیکل عربک اسکالرز نے استعمال کیا ہے، سو وی کانٹ موو فارورڈ وداؤٹ لکنگ دا بیوٹی آف دس آیت آف سورۃ زخرف۔ اب ابرام کہتے ہیں عربی زبان میں، ابرام ہوتا ہے حمزہ با را الف میم۔ ابرام کہتے ہیں عربی زبان میں، جب پرانے اینشنٹ ٹائمز کے اندر سیمنٹ وغیرہ نہیں آیا تھا تو اگر کسی چیز کو مضبوطی دینی ہوتی تھی، لائک کسی کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے کسی چیز کو مضبوطی دینی ہوتی تھی، تو وہ لکڑی کے دو بڑے بڑے پیس لیتے تھے، لاگز لیتے تھے، اور وہ اس کو لے کر اور اس کے درمیان میں بہت سی مٹی بھر کے، فلنگ کر کے، اور بہت ٹائٹ اس کو جو ہے وہ روپ باندھ دیا کرتے تھے، اس کو ابرام کہا کرتے تھے۔ اور یہ خوب ٹائٹ ڈبل ریپ ہوتا تھا تاکہ وہ ایک مضبوط پلر بن جائے، تو اگر ان کو کسی چیز کو کنسٹرکٹ کرنا ہے، کوئی اگر انہوں نے جو ہے وہ پلر بنانا ہے، کوئی کمرہ بنانا ہے، تو یہ دیٹ واز سمپل پیٹرن آف اینشنٹ عربیا، کہ جس میں وہ دو لکڑی کے بڑے بڑے لاگ لے کر ان کے درمیان میں مٹی بھر کے اور ان کو خوب لکڑی سے ٹائٹ کر دیا کرتے تھے، اٹ واز کائنڈ آف اے اینشنٹ پلر ان عربیا۔ اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا۔ دیکھیں جب آپ رسی کو ریپ کرتے ہیں تو دو طریقے سے آپ رسی ریپ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کا رسی سے، آپ اپنے ذہن میں لے آئیں آپ کا شو لیس، جب آپ شو لیس ٹائی کرتے ہیں تو آپ شو لیس ایسے نہیں ٹائی کرتے کہ جس کو آپ کھول نہ سکیں، وہ بچے جو کہ بڑی مشکل سے بےچارے اپنے لیسز کھولتے ہیں تو وہ بڑے احتیاط سے اپنی شو لیس کی بو بناتے ہیں تاکہ آرام سے کھل جائے، ورنہ دو گھنٹے اس کو کھولنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے شو لیس ٹائی کرنا والی رسی جس کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کھولنا ہے، اور ایک آپ رسی ٹائی کرتے ہیں کہ جس کو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کھولنی نہیں ہے، تو آپ ڈبل ریپ، ٹرپل ریپ، فور ٹائم ریپ، فائیو ٹائم ریپ، آپ اس کو خوب اور پھر خوب ٹائٹ کر کے ریپ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت کی اب خوبصورتی دیکھیے گا، ناؤ لسن ٹو دا بیوٹیفل پارٹ آف دس، ام ابرمو امرن فانا مبرمون۔ ام ابرمو امرن، جو ابرمو آیا یہ کفار کے لیے آیا، कि कुफार ने अपने कोई सेल्फ क्रिएटेड थ्योरीज बना लिए हैं और इट्स लाइक उन्होंने अपनी रस्सियां टाइट कर ली हैं. वो आया फेल फॉर्म में. और जो इन्ना मुबरिमून आया, अल्लाह ने कहा ठीक है हम भी पक्का इरादा करने वाले हैं, हम भी पक्का टाई करने वाले हैं. तो जो अल्लाह ने टाई किया है वो इसम फॉर्म में आया है, इसलिए कि कुफार एक टाइम पर अपनी ये कुफर और शिर्क की और अपनी ये अपनी ख्वाहिशात की जिंदगियों की नाफरमानियों की जिंदगियों की रस्सी खोलना चाहेंगे. सूरत हिजर की आयत नंबर 2 में आता है ना, रूबामा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन. ये काफिर बहुत ख्वाहिश करेंगे काश ए काश के हम मुसलमान होते. एट दैट टाइम इन रोजे मेशर दे विल बी विलिंग टू ओपन अप देयर रोप्स, बट देन इट विल बी टू लेट, इट विल बी टू लेट, टू लेट. फिर अल्लाह क्या कहेगा उस वक्त, अल्लाह कहेगा जब ये क़यामत पे कहेंगे रब रूबामा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, तब अल्लाह कहेगा फ़इन्ना मुबरिमून, हम तो यकीनन टाई करने वाले थे. और अल्लाह ने अपना टाई करना इन्ना के साथ, फुशोर के साथ, ताकीद के साथ किया है, और कुफार का टाई करना अम के साथ बताया. दिस इज द ब्यूटी इन ईच वर्ड ऑफ द कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे अल्लाह ताला आपकी और मेरी आंखें खोलना चाहते हैं, तरबियत करना चाहते हैं. जब तरबियत गाह में आकर बैठा जाता है तो खिड़कियों से बाहर नहीं झांका जाता है. इल्म हासिल करने का अदब यह है कि इंसान अपनी तरबियत के लिए जिस जगह पर आया है उसका फोकस सिर्फ उस जगह पर हो. आई विल सीरियसली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर हमने एन कुरान की महफिल में बैठ के कुरान का अदब ना सीखा, हम जिंदगी में किसी चीज का अदब नहीं कर सकते, किसी चीज का अदब नहीं कर सकते. तो अल्लाह ताला ने यहां वाजे कर दिया कि जब कुफार फॉल्स आइडियाज के ऊपर जम जाते हैं तो फिर अल्लाह भी उनको जो है वो टाइटली उनके रास्ते पर छोड़ देता है. फिर इंसान सेल्फ क्रिएटेड थ्योरीज में उलझा रहता है. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ये मैसेज रहती दुनिया तक के हर इंसान को दे दिया गया. तो ये वही होती है, इल्म होता है जो इंसान को निखारता है, इंसान में कॉन्फिडेंस लेकर आता है, कन्विक्शन लेकर आता है. देखिए ये जो इंसान आजकल के बहके बहके रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर कर जाते हैं, हर वक्त परेशान परेशान से रहते हैं, आप कुरान की क्लास में आकर बैठे हैं तो आपकी जिंदगी में ठहराव आना चाहिए. कुरान की जिंदगी, जिंदगी शुरू होने के बाद, कुरान खुलने के बाद जिंदगी में ठहराव आना चाहिए. हम ऑलरेडी बहुत जिटरी लोग हैं, बेचैन लोग हैं, एक हसल बसल में रहते हैं. हर एक के हाथ में न्यूज चैनल्स हैं, हर एक के पास खबरें पहुंचती हैं, बट कैन यू इमेजिन कि हम कुरान पढ़ना पढ़ाना कर रहे हैं और अब दरमियान, अगर ये फिजिकल क्लास होती, डोंट ड्रैग मी टूवर्ड्स टेकिंग अ डिसीजन ऑफ नॉट कंटिन्यूइंग एनी सच थिंग. अगर ये फिजिकल क्लास हो और एक उस्ताद बैठकर कुरान की तालीम दे रहा है और एक ऊंची आवाज में बोलता है कि ये हो गया, दूसरा ऊंची आवाज में बोलता है ये हो गया, तीसरा ऊंची आवाज में बोलता है ये हो गया, चौथा पूछता है क्या हो गया, क्या आपको उस क्लास का माहौल नजर आएगा और क्या अदब रह जाएगा उस कलाम का जो हम सब मिलकर लेना चाह रहे हैं, और क्या रहमतें नाजिल होंगी हम पर जिस रहमतों की को लेने के लिए भिखारी बनकर हम कुरान के सामने आकर बैठते हैं. प्लीज प्लीज एक्ट मैच्योरली. प्लीज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, तरबियत का काम तो कुरान करता है, मेरी क्या मजाल है, मैं तो सिर्फ दुआ करूंगी आप लोगों के लिए. एक्ट मैच्योरली, कुरान के सामने इधर उधर की बातें नहीं होती हैं. हाँ सब अहम हो सकता है, बट दिस इज अ कुरान क्लास, इट्स नॉट जस्ट एनी मोटिवेशनल स्पीच कि जिसमें हम इधर उधर की खाने की और कुकिंग की बातें कर रहे हैं तो साथ में और बातें भी हो गई. इट्स अ कुरान क्लास, सो टेक इट सीरियसली प्लीज. वही का इल्म इंसान को निखारे, यही कुरान चाहता है, और जिंदगी में ठहराव आ जाए, यही एक मोमिन की जिंदगी में आता है. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी ठहराव आया. आप भी परेशान रहते थे, वा वजादा का दालन फहदा, अल्लाह के रसूल भी तलाश में थे, अल्लाह के रसूल भी कॉन्स्टेंटली ही वॉज लुकिंग फॉर द ट्रूथ, तो अल्लाह ने उनको गाइड कर दिया इसी स्लेवरी की तरफ, इसी अब्द बनने की तरफ। तो हम सबको कुरान की एक एक बात से अपने अंदर हिकमत, विजडम, मिच्योरिटी, बुजुर्गी लेकर आनी है। बुजुर्ग इंसान बूढ़ा नहीं होता, बाज लोग बूढ़े हो जाते हैं बट बुजुर्गी नहीं आती उनके अंदर। अल्लाह ना करे हम ऐसे बूढ़े हों कि हमें बुजुर्गी नहीं आए। और बुजुर्गी तो आपके अंदर आपके अर्ली एडल्टहुड में भी आ सकती है, बुजुर्गी एक टीन एजर में भी हो सकती है। वेन वन टीन एजर इज एक्टिंग लाइक सेंसिबल पर्सन, अल्लाह का बंदा, तो इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस इंसान के अंदर बुजुर्गी है, चाहे वो एक टीन एजर है, उसने इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन को समझ लिया है। तो यही चीज यहाँ समझाई गई कि अल्लाह ताला अपने बंदों को समझाना चाह रहे हैं। अल्लाह के रसूल से कहलवा दिया, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, जैसी मैं इबादत करता हूँ तुम लोग वैसे कर ही नहीं सकते। इफ यू विल कंपेयर बिटवीन आया नंबर 4 एंड आया नंबर 5, देन यू विल सी द ब्यूटी कि मा अबतुम में माजी था, रसूलुल्लाह ने बता दिया कि जब मेरे पास वही नहीं आई थी, जब मैं वही की तलाश में था, मैंने तो तब भी शर्क नहीं किया। वाला अना आबिदुम मा अबतुम, जो तुम माजी में करते थे मैंने तब भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तो कैसे हो सकता है कि मैं हाल और मुस्तकबिल में तुम्हारा साथ दूं? तो इसलिए आयत नंबर 5 में आपको फॉर्म जो मिल रही है वो आपको मिल रही है फेले मुदारे फॉर्म, वो आपको फॉर्म मिल रही है हाल और मुस्तकबिल की फॉर्म, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। तो दोनों फॉर्म्स को इकट्ठा कर दिया गया। आयत 5 आयत 3 का मुकम्मल रेपिटेशन है। बाज उलमा लिखते हैं कि क्योंकि इनके प्रपोजल में एक बात थी कि एक साल हम तुम्हारे रब की इबादत करें और एक साल तुम हमारे खुदाओं की इबादत करो, तो इनका ये जो प्रपोजल था ये अल्लाह को सख्त नापसंद आया, इसलिए अल्लाह ने भी रेपिटेशन में कह दिया कि अल्लाह के साथ किसी की बंदगी नहीं हो सकती। और एक इसका कॉनोटेशन इल्मुल बलागा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आता है कि बात बाज़ औक़ात किसी को याद दहाने के लिए दोहराई जाती है, बाज़ औक़ात किसी की को जो है वो नसीहत करते हुए दोहराई जाती है, और बाज़ औक़ात बात दोहराई जाती है गुस्से के अंदर। तो वो कहते हैं देयर माइट बी अ गज़ब ऑफ अल्लाह, कि जिसमें अल्लाह ताला ने आयत को रिपीट किया है और रिपीट करवाया है। नाउ वन वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन आया नंबर 5 में भी जो आया है, मा आबुद में मीम अलिफ मा। नाउ फोकस, ये मीम अलिफ मा अरबी जुबान में कई तरह से आता है। ये मा जो है, अगर ये आता है जो के मीनिंग्स में, जिसका आप अक्सर उर्दू में तर्जुमा पढ़ते हैं कि आपने कहा वला अंतुम आबिदूना और तुम सब इबादत नहीं करते, मा आबुद जिसकी मैं इबादत करता हूँ, उर्दू में ऐसा तर्जुमा किया जाता है। तो अब ये जो मा आबुद आया है, इसमें जो मा है, इस मा को आप समझें, ये अरबी जुबान में आता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, सी, और किसी किसी लिविंग शय के लिए आता है अरबी में मन। अगर आपने कहना हो दैट हु इज अल्लाह, तो कहा जाता है मन अल्लाह, अल्लाह कौन है। और अगर आपने कहना हो अल्लाह क्या है, तो फिर कहा जाता है माल्ला। तो कैसे इसको कंबाइन करते हैं, जब ये अल्लाह के बारे में आयात आ गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम उसकी इबादत नहीं करते, मा आबुद जैसी मैं इबादत करता हूँ, तो इसमें डायरेक्टली आप इस मा को नॉन लिविंग पर अप्लाई करते हुए नहीं लेकर जाएंगे कि ये अल्लाह को नॉन लिविंग कैसे कह दिया। क्या पॉइंट है इसमें कि आप जब कहते हैं किसी को आप जानना चाहते हैं, आप कहते हैं वो कौन है, हु इज ही, तो आप कहते हैं उनका नाम है लेट्स से अब्दुल रहमान। और जब आप उनके बारे में पूछना चाहते हैं व्हाट इज ही, तो अब आप उनका नाम नहीं पूछ रही हैं, आप पूछना चाह रही हैं इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नेक इंसान हैं, अब्बू हैं, किसी के बेटे हैं, कौन है। तो ये जो मा आबुद आया है, इसको उबूदिया पर अप्लाई करें, जैसी मैं इबादत करता हूँ वैसी इबादत तुम लोग कर नहीं सकते। जिस रब की मैं इबादत करता हूँ, व्हाट अ ग्रैंड रब ही इज, जिस रब के उबूदिया में मैंने अपने आप को टाई कर दिया है, क्या उसकी शान है। सो दीज आर द साइंस अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको इन आयात में अल्लाह की तौहीद को वाजे करते हुए बेहतरीन तरीके से नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 6 पर अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 6 सूरतुल काफिरून, लकुम दीनुकुम वलियदीन। Now this is the final declaration कि जिसमें अब पता चल गया कि now it's a sign कि जहां से अब समझ लें कि conflict बाकायदा शुरू हो गया between कुरैश मक्का और मुसलमान. लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वलिया दीनी, और मेरे लिए सिर्फ मेरा दीन. सबसे ज्यादा जिस आयत को समझना इस वक्त जरूरी है इस पूरी सूरत के अंदर, आफ्टर गेटिंग द एसेंस ऑफ ऑल दीज प्रीवियस आयात, ये बहुत यहाँ इम्पॉर्टेंट है. इसके अंदर एसेंस है आपकी और मेरी जिंदगी का. एक नॉर्मल पैटर्न था अरबी जुबान का जिस पर यह जुमला आना चाहिए था, वो होता दीनुकुम लकुम, दीनुकुम लकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वलिया दीनी, और मेरे लिए मेरा दीन. दीनुकुम लकुम व दीनुली, दिस इज द रेगुलर पैटर्न अरबिक लैंग्वेज में. ये होना चाहिए था दीनुकुम लकुम व दीनुली, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन. बट अगेन यहां क्या आया, लकुम दीनुकुम वलिया दीन. लकुम को पहले लाया गया. और जब अल्लाह ताला अपने कलाम में इस अरबिक कंस्ट्रक्शन को इस तरह से रीअरेंज करते हैं और जिस लफ्ज को बाद में आना चाहिए उसको पहले लेकर आते हैं, डेफिनेटली वहां पर इख्तिसास होता है. इख्तिसास किसको कहते हैं, खास करने को, किसी चीज को मुकद्दम करना मकसूद होता है, किसी चीज को पहले मेंशन करना जरूरी होता है बिकॉज उसकी अहमियत वाजे करने के लिए. तो ये यहां पर जो आपको दोनों सूरतों में लकुम और ली दीन से पहले नजर आ रहे हैं, वो अपनी अपनी जगह जो है वो वैल्यू को एनहांस कर रहे हैं. योर वे ऑफ लाइफ इज ओनली फॉर यू एंड माई वे ऑफ लाइफ इज ओनली फॉर मी. द ओनली थिंग एक्चुअली वी शुड एड नाउ इन तर्जमा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीअरेंजमेंट ऑफ लकुम और लिया, Only should come in this. ये खूबसूरती है जो यहां मेंशन की गई है कि जब हम कुरान को पढ़ें, अफला तफक्करून, क्या ये तफक्कुर नहीं करते, अफला या तदब्बरून अल कुरान, तदब्बर करने के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, रब की तरफ तवज्जो चाहिए होती है. वरना क्या होता है, इल्म आता है और स्लिप करता है, इल्म आता है और स्लिप करता है, और इंसान कहता है इल्म तो बहुत है बट इंसान का किरदार उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहा होता. अल्लाह ताला ने जब यहाँ लकुम और लिया पहले मेंशन किया तो तर्जुमे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस अरबी के एसेंस के करीब जाना चाहें, हक तो तब भी नहीं अदा कर सकते, अगर हम करीब भी जाना चाहें तब भी हम जो ये समझेंगे कि इसमें तर्जुमे में ऐड होगा, योर वे ऑफ लाइफ इज ओनली फॉर यू, माई वे ऑफ लाइफ इज ओनली फॉर मी, तुम्हारा दीन कभी भी मेरे लिए नहीं हो सकता. और ये जो ओनली ऐड किया है ये इख्तिसास शो करने के लिए ऐड किया है. दीन में एक्सचेंज मुमकिन नहीं है. जिस दिन हमने अपनी औलादों को ये कॉन्सेप्ट दे दिए, इंशाल्लाह हमारी औलादें फितनों में रहने के बावजूद अपने दीन पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. हमने दीन का कॉन्फिडेंस नहीं दिया, हमने खुद दीन का मजाक बना लिया. तो जाहिर बात है औलाद तो माँ बाप से जनरली अमल में पीछे ही होती है. दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल, इल्ला माशा अल्लाह. कुछ अल्लाह के ऐसे नेक बंदे होते हैं जिनकी औलादें उनसे आगे निकल जाते हैं. यकीनन माँ बाप ही अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जब भी अल्लाह ताला उनको नेक औलादें देता है. माँ बाप की नेकी होती है कि उनकी औलादें नेकी में उनसे आगे निकल जाते हैं. अदरवाइज द जनरल प्रिंसिपल, अगर माँ बाप दीन पर अमल करने में डिग्री नंबर 10 पर हैं, औलाद डिग्री नंबर 2 पर होगी. सी द डिफरेंस. अगर माँ बाप डिग्री लेवल नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं, औलाद कहाँ होगी, एज अ जनरल प्रिंसिपल लेवल नंबर 2 पे. और अगर मां होते हुए मैं खुद लेवल नंबर 1 पर खड़ी हूं तो औलाद कहां होगी, नेगेटिव्स में. फिर हम रोते हैं, हमारे बच्चे, उनको दीन का कोई एहसास नहीं है, हमारे बच्चे, उनमें दीन का कोई जज्बा और कोई दीन का अदब नहीं है, हमारे बच्चे नमाज़ ही नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे दीन का मजाक उड़ाते रहते हैं। हमारे बच्चे कहते हैं फर्क क्या पड़ता है, कोई हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो या मुस्लिम हो या ज्यू हो या क्रिश्चियन हो। इट डज सूट अस, बिकॉज पहले हमें अपने गिरबानों में झांक कर देखने की जरूरत है, इस दीन के साथ मेरी एलिजेंस कितनी है, कहाँ है हमियत दीन की, कहाँ है वफादारी दीन के साथ। जब दीन के ऊपर जद पड़ती है तो उस वक्त क्या मेरी जान पे तकलीफ पड़ती है, या मेरी जान पर तकलीफ उस वक्त आती है जब मेरे मुफाद पर जद पड़ती है। सो वी नीड टू फाइंड एलिजेंस विद दीन। जब दीन के साथ माँ बाप की मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है, औलाद पीछे पीछे आती है, बिलीव मी, औलाद पीछे पीछे आती है, आज नहीं तो कल औलाद पीछे पीछे आती है। जिस दिन औलादों को हमने ये कॉन्फिडेंस देना शुरू कर दिया, हमारी औलादें इंशाल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाएंगी। बट उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे लाने के लिए पहले मुझे खुद अल्लाह से मोहब्बत करनी सीखनी है। मैं तो करूं अल्लाह से मोहब्बत, मैं तो आऊं अल्लाह के करीब, मैं तो जानूं उसका अदब, मैं तो जानूं उसके कलाम में मेरे लिए क्या है, ये 2020 के अंदर मुझे क्या मशवरे दे रहा है, ये मेरे सॉल्यूशंस कैसे सॉल्व कर रहा है, ये मुझे कहाँ लेकर जाना चाह रहा है, ये मेरी मौत को किस डायरेक्शन के और किस रंग में अल्लाह के सामने प्रेजेंट करना चाह रहा है। ये कुरान है जो हमें मरने के बाद भी जिंदा रख सकता है। मौत तो हर एक को आनी है और मौत का किसी का कुछ मालूम नहीं है। बात तो ये है कि जिए ऐसे कि अपने रब से मुलाकात के लिए हर दिन में तैयारियां करते रहें, ताकि जब मलकुल मौत सामने आकर खड़ा हो जाए अचानक से, अचानक हमारे लिए होता है